At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPerksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
You're listening to the Quince Podcast.
ये जो यूपी है ना, यहाँ चुनावी माहौल है। 10 मार्च को नतीजे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ गए हैं, जिससे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एग्जिट पोल के अनुसार तो तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है, पंजाब में कांग्रेस पीछे है और आप आगे है, वहीं गोवा में कांटे की टक्कर है। लेकिन जरा एक मिनट थोड़ा ठहर जाइए, एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल यानी जो 10 मार्च को आने वाला है उसमें कंफ्यूज मत होइए। देखिए, ये बात सही है कि कई बार ये एग्जिट पोल्स सही हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनमें कई खामियां हैं, और वो क्या है उसी को इस एपिसोड में तलाशते हैं।
लाइट्स, एक्शन, पॉलिटिक्स, यूपी इलेक्शंस में क्या बड़ा हो रहा है, जो हो रहा है उसका मतलब क्या है, यूपी को जानने वाले एक्सपर्ट्स को सुनिए प्रतीक वाघमारे के साथ क्विंट हिंदी की इस पॉडकास्ट सीरीज में, ये जो यूपी है ना।
तो आज हैप्पी विमेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है और यूपी के लखनऊ में प्रियंका गांधी ने इस उपलक्ष्य पर पद यात्रा की। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे के साथ उन्होंने पदयात्रा निकाली, जिसमें हजारों बेटियों को शामिल किया गया। उधर एग्जिट पोल की खूब चर्चा हो रही है और सरकार बनाने के दावे भी शुरू हो चुके हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि सातवें और निर्णायक चरण में सपा गठबंधन की जीत को बहुमत से बहुत आगे ले जाने के लिए सभी मतदाताओं और विशेषकर युवाओं का बहुत बहुत आभार, हम सरकार बना रहे हैं। इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव जी, अब तो मतगणना से पहले पराजय स्वीकार कर लो, अहंकार के आकाश से जमीन पर आ जाओ। इस एग्जिट पोल की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी हुई। यूपी में मोदी की पार्टी सरकार बनाएगी, ऐसी कई हेडलाइंस वहां छपी है। खैर, हेडलाइन जो भी हो, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल तो नहीं है। इन एग्जिट पोल पर कई तरह के सवाल खड़े कर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या खामियां हो सकती है। मेरे साथ हैं क्विंट हिंदी के विकास कुमार। आपने यूपी चुनाव पर इनके कई एनालिटिकल आर्टिकल्स जरूर पढ़े होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास कुमार।
धन्यवाद प्रतीक।
तो एग्जिट पोल आ गए हैं और उसके बाद एक तरीके से काफी जो राजनीतिक माहौल है वो बहुत गर्मा गया है, मीडिया में भी खूब बहस हो रही है, लेकिन क्या एग्जिट पोल भी गलत साबित हो सकते हैं? वैसे ये कोई हिडन कोई बात नहीं है, लेकिन कौन कौन सी वजह है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि एग्जिट पोल गलत भी साबित हो सकते हैं?
प्रतीक, एग्जिट पोल पे बात करने से पहले थोड़ा क्या एग्जिट पोल आए कल उसको उसके बारे में जानना जरूरी है। इसमें पहले बताते हैं कि यूपी में क्या एग्जिट पोल रहे। इसमें 5 एग्जिट पोल का अगर औसत निकालते हैं तो उसमें बीजेपी को 257 से लेकर के 273 सीट मिली, एसपी को 114 से 130, बीएसपी को 8 से 15 सीट मिलती दिख रही है। ये एग्जिट पोल है, ऐसा मतलब हो सकता है। अब इसमें गलतियों की बात करें तो कई बार एग्जिट पोल पे सवाल उठे हैं, उसकी बड़ी वजहें हैं। उसमें एक बड़ी वजह ये है कि अभी हाल में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे तो वहां पे जो एग्जिट पोल था उसमें बीजेपी मेजोरिटी में थी, लेकिन जब असली नतीजे आए तो उसमें 77 सीट पर थी, टीएमसी 211 सीट पे थी। फिर दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, वहां भी जो एग्जिट पोल था उसमें बीजेपी को 11 से 17 सीट मिल रही थी, आम आदमी पार्टी को उसमें 53 से 57 सीट मिल रही थी। हालांकि जो नतीजे जब आए तो उसमें बीजेपी सिर्फ 8 सीट और आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिली। इसके बाद बिहार चुनाव की भी बात कर लेते हैं। बिहार चुनाव में बीजेपी को एग्जिट पोल में 116 सीट, तो रिपब्लिक जन की बात ने 104 सीट, और आज तक एक्सिस माई इंडिया ने 80 सीट दी थी। हालांकि जब नतीजे आए तो उसमें 125 सीट बीजेपी को मिली थी और आरजेडी को 110 सीट मिली थी। तो ऐसे में जो पीछे के चुनाव हैं उनका रिकॉर्ड कहता है कि एग्जिट पोल जितने सही होते उतने गलत भी साबित हो सकते हैं।
अच्छा, एग्जिट पोल्स में जो वोटों का प्रतिशत है वो क्या बताता है कि कहां पर गलती हो सकती है इसमें?
प्रतीक, आपने एग्जिट पोल में वोटिंग परसेंट की बात की तो उसमें मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 46% वोट मिले हैं और करीब 228 से 326 सीट मिल रही है। एसपी प्लस को 36% वोट मिलते दिखाए गए हैं, जिसमें इसको सीटों में देखें तो सीटें बहुत कम, मतलब 71 से 101 तक पहुंचती हैं। बीएसपी को बहुत कम परसेंटेज, करीब 12% वोट मिल रहे हैं और सीटें 3 से 9% मिल रही हैं। कांग्रेस को 3% वोट मिल रहे हैं और सीटें महज 1 से 3 सीटें उनके खाते में आ रही हैं। प्रतीक, जहां तक वोट परसेंट की बात है तो मायावती को एग्जिट पोल में 12% वोट मिल रहे हैं, जबकि मायावती का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उनका वोट परसेंट कभी भी 19% से कम नहीं हुआ है। ये चाहे अखिलेश की सरकार आई हो या मोदी लहर हो, कहीं पर भी उनका वोट परसेंट 19% से ज्यादा ही रहा है। अगर मैं बात करूं 2007 की, तो 2007 में मायावती ने सरकार बनाई थी, तब उनका वोट परसेंट 30% था। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई लेकिन मायावती का वोट परसेंट 25% था। 2017 में मोदी लहर थी लेकिन उनका वोट परसेंट 22% था। और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी उनको 19% वोट मिले थे। तो अब की बार एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा है कि सिर्फ 12% वोट मिले हैं उनको, तो ये बहुत आसान बात नहीं लगती है। उसकी वजह क्या है कि मायावती का जो कोर वोट बैंक है वो कभी उनसे अलग नहीं हुआ। हमेशा चाहे योगी लहर हो, मोदी लहर हो या अखिलेश की सरकार आई हो, हमेशा उनको वोट किया है। तो अब की बार ये तब भी संभव है जब उनका जो कोर वोटर है वो उनको वोट ना करे। और पूरे चुनाव में आप देखेंगे तो जो मायावती का जाटव वोट है वो उनके साथ ही रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा डाउट होता है कि आखिर 12% वोट सिर्फ क्यों मिल रहे हैं मायावती को। हालांकि नतीजे 10 मार्च को आ जाएंगे, तब पता चल जाएगा कि आखिर एग्जिट पोल सच था या मायावती का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो।
हाँ, आपने ये तो बात सही की कि 10 मार्च को पता चली जाएगा कि एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन एक और ये चीज है कि एग्जिट पोल से कई टाइम पहले ओपिनियन पोल्स भी आए हैं, तो क्या ओपिनियन पोल में जो रिजल्ट्स आए थे वो इन एग्जिट पोल में उसका कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई देता है या पूरी तरीके से वो अलग है या क्या है?
प्रतीक, इसमें ये सही बात है कि जो ओपिनियन पोल था वो मतदान के पहले हुआ था और एग्जिट पोल मतदान के बाद हुआ, लेकिन आप देखेंगे तो लगभग लगभग जो ओपिनियन पोल था वही एग्जिट पोल है। मसलन अच्छा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। उसमें एबीपी सी वोटर ने ओपिनियन पोल में बीजेपी को 223 से 225 सीटें दी थी, एग्जिट पोल में भी वही रिफ्लेक्शन दिखा और 228 से 244 सीटें मिलती दिख रही हैं। एसपी को ओपिनियन पोल में 145 से 157 सीटें दी गई थी, एग्जिट पोल में 132 से 148 सीटें दी जा रही हैं। रिपब्लिक भारत की बात कर ले तो रिपब्लिक भारत ने भी ओपिनियन पोल में बीजेपी को 223 से 225 सीटें दी थी, एग्जिट पोल में 240 सीटें मिल रही हैं। एसपी को भी ओपिनियन पोल में 111 से 131 सीटें मिली थी, लेकिन एग्जिट पोल में ये रिफ्लेक्शन लगभग लगभग दिखा, मतलब 7 सीटों का लगभग फर्क था, 140 सीटें मिल रही हैं। और टाइम्स नाउ की बात कर ले तो टाइम्स नाउ में अगर उसके ओपिनियन पोल की बात करें तो बीजेपी को 227 से 254 सीटें दी गई थी और एग्जिट पोल में बीजेपी को 225 सीटें मिलती दिख रही हैं। एसपी को भी ओपिनियन पोल में 136 से लेकर 151 सीटें दी गई थी और एग्जिट पोल में वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, 151 सीट। तो कहीं कहीं एक ये एकदम साफ रिफ्लेक्शन है कि जो ओपिनियन पोल में सीटें थी वही उसके कुछ संख्या आगे पीछे हो सकती है, लेकिन लगभग एग्जिट पोल में भी वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी प्रतीक।
अच्छा विकास, इसके अलावा जो यूपी को लेकर एग्जिट पोल्स आए तो उसमें सपा का जो है वोटिंग परसेंटेज वो भी बढ़कर बताया गया इस बार का, और बीजेपी का भी वोटिंग परसेंटेज।
प्रतीक, अगर वोटिंग परसेंट की बात करें तो 2017 में मोदी की लहर चल रही थी और उसमें बीजेपी को 40% वोट मिले थे, लेकिन अब की बार इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया किस एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस को 46% वोट मिल रहे हैं। जबकि ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि 2017 में मोदी लहर थी, लगभग हर जगह पे वो चीजें दिख रही थी, वो इफेक्ट दिख रहा था, लेकिन अब की बार कौन सा ऐसा जादू चला कि पिछली बार से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। जबकि अब की बार तो जो ओबीसी के बड़े चेहरे माने जाते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, इन लोगों ने पार्टी छोड़ करके एसपी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद भी क्या आखिर ऐसा था कि बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज बढ़ गए? इसमें कई लोग एक जवाब देते हैं कि जो लाभार्थी वोटर रहा है, जो कि तीसरे फेज के बाद एक नया शब्द आया मीडिया में कि एक लाभार्थी वोटर है जो कि बड़ा साइलेंट है और बीजेपी को वोट कर रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि लाभार्थी वोटर रहा हो और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हो ये उसी का इफेक्ट हो। लेकिन ये इतना ज्यादा मुझे कम ही उम्मीद लगती है कि 46% तक बीजेपी को वोट पड़े हों। हालांकि 10 मार्च को ये नतीजे आने के बाद कई पिक्चर क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा जादू चला 2022 के चुनाव में कि एग्जिट पोल में वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है। और अब बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव को उनकी पार्टी को 30% वोट में सरकार बन गई थी, 2012 की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब की बार एग्जिट पोल में इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया ने 36% वोट मिलता दिखाया है एसपी को, लेकिन इनकी सीटें जो हैं वो 100 के करीब पहुंच रही हैं। तो एक ये भी बड़ा समझ से परे है कि आखिर वोटिंग परसेंटेज अखिलेश का बढ़ रहा है, 30 से 36% पे जा रहे हैं, लेकिन सीटों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है, वो 100 के आंकड़े तक ही पहुंच पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक समझने वाली बात है कि आखिर ये कहां से उनका वोट मतलब सीटें घटी हैं, वोट परसेंटेज बढ़े हैं। इसमें हालांकि कई लोग एक तर्क ये देते हैं कि ओवैसी, सिद्धुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने और मायावती ने कई जगहों पर वोट काटे हैं, तो उससे क्या हुआ है कि अखिलेश को जो वोटिंग परसेंटेज का बढ़ा है लेकिन वो वोट सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, तो शायद इसी का रिफ्लेक्शन एग्जिट पोल में दिख रहा है।
जी, तो खैर एग्जिट पोल तो बता ही रहे हैं कि यूपी में क्लियर कट जो है बीजेपी की सरकार आ रही है, लेकिन फिर भी 10 मार्च यानी 2 दिन बाद जो नतीजे आने वाले हैं वही एग्जैक्ट आंकड़े होंगे, तो उसका इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए।
शुक्रिया।
तो आप सुन रहे थे यूपी चुनाव पर क्विंट हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज ये जो यूपी है ना। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया एपिसोड आने पर आपको अपडेट मिल जाए। इस पॉडकास्ट को आप कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना और भी कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए क्विंट के साथ।